पृष्ठ संख्या 78। अब ध्यान देने की बात यह निकली कि ईर्ष्या के संसार के लिए ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या के पात्र के अतिरिक्त स्थिति पर ध्यान देने वाले समाज की भी आवश्यकता है। इसी समाज की धारणा पर प्रभाव डालने के लिए ही ईर्ष्या की जाती है। ऐश्वर्य गुण या मान का गुप्त रूप से बिना किसी समुदाय को विदित कराए सुख या संतोष भोगने के लिए नहीं। ऐश्वर्य या गुण में हम चाहे किसी व्यक्ति को से वस्तुतः बढ़कर या उसके तुल्य न हो, पर यदि समाज की यह धारणा है कि हम उससे बढ़कर या उसके तुल्य हैं तो हम संतुष्ट होंगे, ईर्ष्या का घोर कष्ट न उठाने जाएंगे। कैसी अनोखी बात है कि वस्तु प्राप्ति से वंचित रहकर भी हम समाज की धारणा मात्र से संतुष्ट रहते हैं। ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है। इसके प्रभाव से हम दूसरे की बढ़ती से अपने कोई वास्तविक हानि न देखकर भी व्यर्थ दुखी होते हैं। समाज के संघर्ष से जो अवास्तविकता उत्पन्न होती है वह हम पर प्रभाव डालने में वास्तविकता से कम नहीं, वह हमें सुखी भी कर सकती है दुखी भी। फारसी मसल है, मार्गे अम्बोह जश्ने दारद। हम किसी कष्ट में हैं, इसी के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति हमसे अपना भी कष्ट वर्णन करने लगता है तो हमारे मुंह पर कुछ हंसी आ जाती है और हम कुछ आनंदित होकर कहते हैं, भाई हम भी तो इसी बला में गिरफ्तार हैं। यदि 10-5 आदमी वही कष्ट बताने वाले मिल जाएं तो हमारी हंसी कुछ बढ़ जाती है। एक बार किसी ने अपनी संबंधी के मरने पर एक विद्वान से पूछा कि हम धैर्य कैसे धारण करें। उसने कहा, थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसी संसार में लाखों अनाथ इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, लाखों बच्चे बिना माँ बाप के रो रहे हैं, लाखों विधवाएं आंसू बहा रही हैं। यदि हमें कोई कष्ट है तो क्या दूसरों को भी उसी कष्ट में देखकर थोड़ी देर के लिए हमारा वह कष्ट सचमुच घट जाता है? यदि नहीं घटता तो यह हंसी कैसी, यह धैर्य कैसा? यह हंसी केवल स्थिति के मिलान पर निर्भर है, जिससे अपनी स्थिति के विशेषत्व का परिहार होता है। यह लोक संश्रय का एक गुण है कि कभी कभी स्थिति के बने रहने पर भी उसके विशेषत्व के परिहार से तत्संबंधी भावना में अंतर पड़ जाता है, पर यह अंतर ऐसा ही होता है जैसे रोते रोते सो जाना या फोड़ा चीरते समय क्लोरोफार्म सूंघ लेना। समाज में पड़ते ही मनुष्य देखने लगता है कि उसकी स्थिति दोहरी हो गई है। वह देखता है कि मैं यही हूँ और मैं यह समझा जाता हूँ। इस दोहरेपन से उसका सुख भी दोहरा हो जाता है और दुख भी। मैं बड़ा हूँ, इस निश्चय के साथ यह निश्चय और जुड़ जाने की कि मैं बड़ा समझा जाता हूँ, मनुष्य के आनंद या सुख के अनुभव में वृद्धि होती है। इसी क्रम में मैं क्षुद्र हूँ, इस धारणा के साथ मैं क्षुद्र समझा जाता हूँ, इस धारणा के योग से दुख के अनुभव की वृद्धि होती है। इस प्रकार स्थिति के एकांत और सामाजिक दो विभाग हो जाने से कोई तो दोनों विभागों पर दृष्टि रख सकते हैं और कोई एक ही पर। शक्तिशाली और प्रतिभा संपन्न मनुष्य पहले यह प्रयत्न करते हैं कि हम ऐसे हों, फिर वैसे हो जाने पर यदि आवश्यक हुआ तो वे यह प्रयत्न करते हैं कि हम ऐसे समझे जाएं। इन दोनों के प्रयत्न जुदे जुदे हैं। संसार में शक्ति संपन्न सब नहीं होते, इससे बहुत से लोग स्थिति के पहले विभाग के लिए जिन प्रयत्नों की आवश्यकता है उनमें अपने को असमर्थ देख दूसरे ही विभाग से किसी प्रकार अपना संतोष करना चाहते हैं और उसी पर दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं। ईर्ष्या ऐसे लोगों के हृदय में बहुत जगह पाती है और उनके प्रयत्नों में सहायक भी होती है। भाव प्रवर्तन आदि के बल से जिस समुदाय के प्राणी परस्पर ऐसे बन गए हैं कि अपने इंद्रियानुभाव और भावनाओं तक को जवाब देकर दूसरे के इंद्रियानुभाव और भावनाओं द्वारा निर्वाह कर सकते हैं, उसी से ईर्ष्या का विकास हो सकता है। अतः ईर्ष्या का अनन्य अधिकार मनुष्य जाति ही पर है। पर कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को कुछ खाते देख उसे आप खाने की इच्छा कर सकता है, पर वह यही नहीं चाह सकता कि चाहे हम खाएं या न खाएं वह दूसरा कुत्ता न खाने पाए। दूसरे कुत्ते की दृष्टि में हमारी स्थिति कैसी है, इसकी चिंता उस कुत्ते को न होगी। अपने विषय में दूसरों के चित्त में अच्छी धारणा उत्पन्न करने का प्रयत्न अच्छी बात है। इस प्रयत्न को जो बुरा रूप प्राप्त होता है वह असत्य के समावेश के कारण दूसरों की धारणा की वास्तविक और अपनी स्थिति की सापेक्षता के कारण। जब हम अपने विषय में दूसरों की झूठी धारणा और अपनी स्थिति के सापेक्ष रूप मात्र से संतोष करना चाहते हैं तभी बुराइयों के लिए जगह होती है और ईर्ष्या की राह खुलती है। जैसी स्थिति हमारी नहीं है, जैसी स्थिति प्राप्त करने की योग्यता हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग वैसी स्थिति समझें। जैसी स्थिति से वास्तव में हमें सुख कोई सुख नहीं है, वैसी स्थिति किसी दूसरे के समान या दूसरे से अच्छी स्वयं समझने से नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा समझी जाने से ही हम संतोष करते हैं। ऐसे असत्य आरोपों के बीच यदि ईर्ष्या ऐसी असार वृत्ति का उदय हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। ऊपर जो कुछ कहा गया उससे शायद यह धारणा हो कि ईर्ष्या अप्राप्त वस्तु ही के लिए होती है, पर यह बात नहीं है। हमारे पास जो वस्तु है उसे भी दूसरे के पास देखकर कभी कभी हमें बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। किसी गरीब पड़ोसन को क्रमशः धनी होते देख आसपास में धनी माना जाने वाला मनुष्य कभी कभी बुरा मानने लगता है। एक ऊंची जाति का आदमी किसी नीची जाति के आदमी को अपने ही समान वस्त्र आदि पहने देख बुरा मानता है और उड़ता है। इसका कारण यह अस्थाई बुद्धि या अहंकार है कि हम ऊंचे हैं वह नीचा है, हम बड़े हैं वह छोटा है। लोक व्यवस्था के भीतर कुछ विशेष वर्ग के लोग जैसे शिष्ट, विद्वान, धर्मचिंतक, शासन कार्य पर नियुक्त अधिकारी, देश रक्षा में प्राण देने को तैयार वीर इत्यादि औरों से अधिक आदर और सम्मान पात्र होते हैं। इनके प्रति उचित सम्मान न प्रदर्शित करना अपराध है। अन्य वर्ग के लोग धर्मानुसार इन्हें बड़ा मानने को विवश हैं, पर इन्हें दूसरों को छोटा प्रकट करने या मानने तक का अधिकार नहीं है। जहां इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का सतत्व खोया,